हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव और तारा की हल्दी की रस्म हो चुकी थी। तारा पहले ही इस शादी से खुश नहीं थी, उसके दिल में ध्रुव के लिए फीलिंग्स थीं, लेकिन ये शादी अगर नॉर्मल तरीके से होती तो वो जरूर खुश होती। जिस तरह से ध्रुव बदला लेने के लिए और अपना मकसद पूरा करने के लिए तारा से शादी कर रहा था, तारा को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। तारा ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत अपने पिता मौलिक मल्होत्रा से की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी उसे मौलिक की मदद की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मौलिक ही था जो उसे इन हालातों से बाहर निकाल सकता था। अपनी जिंदगी बचाने के लिए तारा ने अपने ईगो को साइड में रखा और मौका देखकर वो मौलिक से बात करने पहुंच गई थी। शादी अटेंड करने के लिए मौलिक भी राणा मेंशन में ही था। तारा ने बात को घुमाए फिराए बिना सीधे सीधे यही कहा कि उसे ये शादी नहीं करनी है और उसे किसी भी हाल में इन सबसे दूर जाना था। मौलिक के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। आज तारा उससे पहली बार अच्छे से बात कर रही थी और साथ ही उसने अपने लिए एक सही डिसीजन लिया था। मौलिक ने तारा की बात पर हाँ में सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, ठीक है फिर, मैं सारी अरेंजमेंट देखता हूँ। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कोशिश करो कि तुम नॉर्मल बिहेव करो। डोंट वरी, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें इन सबसे बाहर निकाल लूंगा। बोलते हुए मौलिक तारा की आंखों में देख रहे थे और उसे ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि उनके रहते तारा के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। मौलिक की आंखों में जज्बात देखकर तारा के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने सिर हिलाकर कड़वाहट भरे लहजे में कहा, ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए मिस्टर मल्होत्रा, मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं आपके पास हेल्प के लिए कभी नहीं आती। ये समझ लीजिए कि ये मेरी लाइफ का पहला और आखिरी काम है जो आप करने वाले हो। उसके बाद मैं आप में से किसी के सामने कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारी दिल की ये नफरत और गुस्सा जायज है और इसकी वजह भी मैं ही हूँ। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। मेरा यकीन करो बेटा, मैं कभी माफिया की दुनिया में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। उस दुनिया ने मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें अब तक इन सबसे बचाना चाहता था, इसीलिए खुद से दूर किया था। मैंने दिया को खो दिया था, बस उसके बाद तुम्हें नहीं खोना चाहता था, भले ही उसके लिए मुझे तुमसे दूर भी क्यों ना रहना पड़े। मौलिक ने अपनी सफाई में काफी कुछ कह दिया था। आज पहली बार था जब उसने तारा के सामने खुलकर अपने जज्बातों को रखा था। तारा बेहद शांति से उनकी बातों को सुन रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र ध्रुव पर पड़ी, जो उन्हें बातें करते देखकर उनकी तरफ आ रहा था। तारा ने गहरी सांस ली। तारा ने सख्त और तेज आवाज में कहा, मैंने कहा ना मिस्टर मल्होत्रा, मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। प्लीज़ आप अपना ये इमोशनल ड्रामा किसी और के सामने जाकर कीजिए जिसे आप पर यकीन हो। मौलिक जब तारा को सब कुछ बता रहे थे तब उन्होंने एक पल के लिए तारा के चेहरे के भावों को कोमल पड़ते देखा था, पर अचानक ही वो फिर से उसी गुस्से और कड़वाहट में बात करने लगी थी। ये सुनकर उनका दिल बिखर गया था और आंखें नम होने लगी थीं। उधर से आते हुए ध्रुव ने भी तारा की बातें सुन ली थीं। मौलिक की पहचान जानने के बाद ध्रुव को झटका जरूर लगा था, पर आज भी उसके दिल में मौलिक के लिए उतनी ही इज्जत थी। ध्रुव ने तारा की तरफ घूर कर देखा और फिर मौलिक का हाथ पकड़कर कहा, सर क्यों आप बेवजह सफाई दे रहे हैं? कुछ लोगों को दूसरे के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे खुद झूठे होते हैं तो उन्हें सामने वाले भी झूठ नजर आते हैं। जो दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें यही लगता है कि उनकी तरह सब लोग भी धोखेबाज होंगे। ध्रुव की तंज भरी बातें तारा के सीने में तीर की तरह लगी, तो वहीं मौलिक को अब तारा के अचानक बदले बर्ताव का कारण समझ आ गया था। हालांकि वो अभी भी उलझन में थे कि तारा ने अपने गुस्से में वो सब कुछ बोला था या ध्रुव को देखकर। मौलिक ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, कई बार सच हमारी आंखों के सामने होता है फिर भी हम उसे देखना नहीं चाहते। एक बार अपनी आंखों से गुस्से की पट्टी हटाकर देखो, शायद चीजें और सामने वाला इंसान वैसा नहीं है जैसा हम समझ रहे होते हैं। इनडायरेक्टली मौलिक ने उन दोनों को ही समझाया था। ना तो तारा मौलिक की सच्चाई समझना चाहती थी और ना ही ध्रुव को तारा के इंटेंशन समझ आ रहे थे। अपनी बात खत्म करके मौलिक उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चले गए थे। वहीं तारा और ध्रुव एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देख रहे थे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उनके साथ रिश्ता कैसा है, पर मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम उनके साथ बदतमीजी से बात करो। आगे से अगर तुमने उन्हें हर्ट किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ध्रुव ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा तो अभी भी मेरे साथ नहीं हो रहा है? जो भी बुरा करना था वो तुम कर रहे हो, इससे ज्यादा मैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? तारा ने कंधे उचकाते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। जैसे ही तारा की बात खत्म हुई, ध्रुव ने उसे पीछे से गर्दन से कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद सर्द आवाज में कहा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो यहाँ शादी की तैयारी के बजाय तुम्हारी अर्थी उठने की तैयारी हो रही होती। क्या लगता है ध्रुव राणा, दोनों में कुछ खास फर्क वैसे भी नहीं है? तुम जैसे इंसान से शादी करना मेरे लिए मौत के बराबर ही है, तारा ने तेज सांस लेते हुए कहा। हालांकि बोलने के बाद उसे एहसास हुआ था कि अनजाने में उसने क्या कह दिया था। ध्रुव ने एक झटके में तारा को छोड़ दिया था और वो वहां से जाने लगा। तारा के शब्दों से ध्रुव की आंखों में आई मायूसी को तारा ने देख लिया था। उसके जाते ही तारा ने सिर पकड़ा और अफसोस भरे लहजे में कहा, पहले ये डिसाइड क्यों नहीं कर लेता कि मुझसे प्यार करना है या नफरत। मैंने जो किया उसके लिए नाराजगी है तो सजा देना, प्यार से नाराजगी जताओगे तो हंसकर सह लूंगी, लेकिन नफरत में मुझे बर्बाद करने आओगे ध्रुव राणा तो मैं तुम्हें भी किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। कुछ पल के लिए तारा वहीं पर खड़ी रही और फिर अपने कमरे में चली गई थी। जैसे जैसे उन दोनों की शादी का वक्त नजदीक आ रहा था, ये रिश्ता उन दोनों के लिए ही बोझ साबित हो रहा था। वहीं ध्रुव, तारा का गुस्सा इस वक्त जिम रूम में पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। नफरत हो रही है मुझे खुद से, क्योंकि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे इंसान प्यार और किसी रिश्ता निभाने के लायक नहीं होते? तुम गलत हो तारा अग्निहोत्री, तुम जैसे धोखेबाज लोग किसी रिश्ते और प्यार के लायक नहीं होते और फिर आकर शिकायत करते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ था। मौलिक सर ने अपनी मजबूरी के चलते तुम्हें सेफ रखने के लिए खुद से दूर रखा। उनके झूठ और धोखे से तुम्हें नफरत है, तो तुम फिर ये कैसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि तुमने मुझसे जो झूठ बोला, मेरे साथ जो किया, उसके बाद मैं तुमसे प्यार करूंगा? आई हेट यू, ध्रुव ने हाफती आवाज में कहा। हालांकि युग ने मौलिक को पहले ही समझा दिया था कि वो इस शादी में शामिल होने आया है तो कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करे जिसकी वजह से उसे गुस्सा आए, लेकिन तारा की मदद मांगने के बाद मौलिक उसके वहां से निकलने के इंतजाम करने लग गया था। अगले दिन शाम के वक्त तारा और ध्रुव की मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। ध्रुव पहले ही रस्म के लिए पहुंच गया था जबकि तारा जानबूझकर टाइम लगा रही थी। तारा का इंतजार करते हुए ध्रुव इरिटेट हो रहा था। उसने चिढ़ते हुए सारा से कहा, और कितना वेट करना पड़ेगा? आपको लगता है मैं फ्री हूँ जो पहले मुझे यहाँ लाकर बिठा दिया?
ओह, तो किसी से अपनी होने वाली पत्नी का इंतजार नहीं हो रहा और अपनी बेचैनी में वो सबके ऊपर गुस्सा उतार रहा है। अब तो मैं तारा को कहूंगी कि वो थोड़ा और रुक कर आए, मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम उसका वेट नहीं करते हो, सारा ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव जानता था कि सारा से बहस करना बेकार था। वो बिना कुछ बोले वहां से उठकर जाने लगा कि वो हड़बड़ाहट में युग से टकरा गया था। युग को देखते ही ध्रुव ने सिर हिलाया और परेशान लहजे में कहा, ये सब ड्रामा करना जरूरी है क्या? आपको मेरी शादी उसी से करवानी थी तो नॉर्मल रजिस्टर मैरिज करवा सकते थे। पहले ही मेहर की शादी के चक्कर में इन सब चीजों में मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है और आपने फिर से वही सब तमाशा शुरू कर दिया। डैड, तुम मुझे थैंक यू बोलने के बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हो, उल्टा तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुम्हारी वेडिंग के लिए इतना सब अरेंजमेंट करवाया ताकि ये सब यादगार रह सके। युग ने प्लेफुल वे में जवाब दिया, अगर आप ये सब अरेंजमेंट नहीं भी करवाते तो मैं ये हादसा कभी नहीं भूलने वाला था। अच्छे से जानता हूँ कि आप मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने मिशन में कामयाब हो गए, ध्रुव चुलकर बोला। और फिर वहां से जाने को हुआ कि तभी सामने से तारा अलीशा के साथ आ रही थी। तारा ने एमरल्ड ग्रीन कलर का लहंगा पहना था जिसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज था। मिनिमल ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ उसका लुक अच्छा लग रहा था, पर तारा की आंखों और चेहरे पर किसी तरह की चमक नहीं थी। जैसे ही ध्रुव और तारा की नजरें एक बार फिर से एक दूसरे से टकराई तो वे नफरत से एक दूसरे को घूरने लगे। अगर इन दोनों को मैं लड़ने के लिए खुला छोड़ दूं तो कहना मुश्किल होगा कि पहले कौन किसको जान से मारेगा, युग ने सिर हिलाकर कहा। जब जानते हो कि दोनों के बीच में इतनी नफरत है तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, कृषा ने युग का हाथ पकड़कर उसकी बात का जवाब दिया। तुम तो जानती हो कि मुझे जबरदस्ती के रिश्ते बनाना कितना पसंद है, लेकिन मेरी नज़र कभी धोखा नहीं खाती। देखो हम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है, ठीक उसी तरह एक दिन इन दोनों के बीच में भी बहुत प्यार होगा। चलो अब जाकर अपने बेटे का मूड थोड़ा सही करो ताकि वो फंक्शन को ठीक से एंजॉय कर सके, युग ने कृषा को समझाया, क्योंकि सिर्फ कृषा ही थी जो ध्रुव को वापस रस्म के लिए ला सकती थी। युग के कहने पर कृषा ध्रुव को लेकर वापस रस्म निभाने के लिए ले आई थी। मेहंदी की रस्म के साथ साथ वहां थोड़ा गाना बजाना भी चल रहा था और सब अपने में ही लगे हुए थे। ध्रुव और तारा बीच में एक साथ एक काउच पर बैठे थे और उनके पास मेहंदी आर्टिस्ट उन्हें मेहंदी लगा रही थी। ध्रुव और तारा एक दूसरे के बिल्कुल पास थे और इस बात से उन दोनों को ही गुस्सा आ रहा था। मेहंदी लगाते वक्त मेहंदी आर्टिस्ट ने ध्रुव से पूछा, आप बता दीजिए कि आपको अपनी मेहंदी में अपनी वाइफ का पूरा नाम लिखाना है या सिर्फ इनिशियल? तारा नाम है ना उनका? कौन तारा? मैंने सुना है कि मेहंदी में उसी का नाम लिखाया जाता है जो आपके दिल में बसता है, और जो मेरे दिल में है उसका नाम मेहर है, तो आप वही नाम लिखिए, ध्रुव ने जानबूझकर तारा को चिढ़ाते हुए कहा। वो जानता था कि उसकी इस हरकत पर तारा जरूर गुस्सा हो जाएगी। जैसा ध्रुव ने सोचा था वैसा ही हुआ। तारा ध्रुव को खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। ध्रुव से ज्यादा गुस्सा तो उसे मेहंदी आर्टिस्ट पर आ रहा था जिसने बिना सोचे समझे ध्रुव की मेहंदी में मेहर का नाम लिख दिया था, जबकि उन दोनों के नाम के डेकोरेटिव होर्डिंग्स वहां पर लगे हुए थे। तारा ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अच्छी बात है ना, इसके दिल में मेहर बसे या फिर कोई और, भाड़ में जाए सब, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तारा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर जिस तरह से वो तेज सांस ले रही थी ध्रुव को साफ पता चल रहा था कि तारा गुस्से में है। तारा को इस तरह अंदर ही अंदर जलते भुनते देखकर उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। खुद को शांत करते हुए तारा की नज़र अपनी मेहंदी आर्टिस्ट पर गई जो ध्रुव का नाम लिखने जा रही थी। तभी तारा ने उसे टोकते हुए कहा, मुझे अपने हाथ पर किसी का भी नाम नहीं लिखवाना है। लेकिन मैम, मेहंदी आर्टिस्ट ने उसे समझाना चाहा, पर उसकी बात सुनने से पहले ही तारा ने गुस्से में कहा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, वरना अभी जाकर मैं अपने हाथ धो लूंगी। मेहंदी आर्टिस्ट बिल्कुल शांत हो गई थी और तारा के हिसाब से चलने लगी थी। वहीं उसके खुद का नाम नहीं लिखवाने पर ध्रुव को भी गुस्सा आ रहा था। उन सबसे अलग ऊपर याशी अकेली थी। वो कुछ देर के लिए नीचे आई जरूर थी, लेकिन बाद में वापस अपने कमरे में चली गई थी। राणा मेंशन की सिक्योरिटी काफी टाइट थी, इस वजह से युग और कृषा को भी उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। याशी वापस आते हुए थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि राणा मेंशन काफी बड़ा था। अनजाने में वो मान्या के कमरे में चली गई थी। मान्या की मानसिक हालत जो भी हो, पर घर में जो भी हो रहा था उससे मान्या अनजान नहीं थी। ऊपर से याशी के चेहरे से साफ पता चलता था कि वो युग और कृषा की बेटी है। आई एम सॉरी, मैं गलती से आपके रूम में आ गई, याशी ने अपनी घबराहट को काबू करके कहा, क्योंकि मान्या की अजीब हालत देखकर वो डर गई थी। जैसे ही याशी जल्दी से बाहर जाने को हुई, मान्या ने उसे पकड़ लिया था।